नमस्कार भारत, तारीख 26 फरवरी दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। सीरिया के होम्स में सैन्य ठिकाने पर हमला, संयुक्त राष्ट्र के दूत ने जताई आशंका, शांति वार्ता को पटरी से उतारने की है साजिश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की भीड़ के बीच एक ऐसे मंत्री भी हैं जिनके पास न गाड़ी है न बैंक बैलेंस।
जनता ने ही वोट हमको दिया, उन्हीं के वोट के बल पर हम विधायक हुए, तो पहले हमने जनता को देखा है, फिर जनता मौका दे देगी तो अपना भी देखेंगे।
न्यूज मेकर्स में मुलाकात आईपीएल में बंपर कीमत हासिल करने वाले मोहम्मद सिराज से।
डैड ऑटो चलाते, हमारे स्ट्रगल करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। जिनेवा में जारी शांति वार्ता में सीरिया के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि वार्ता में शामिल सभी दलों को शनिवार को होम्स में हुए हमलों की आलोचना करनी ही होगी। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर सैनिक हैं। वार्ताकार बशर अल जाफरी ने कहा है कि जो भी पक्ष इन हमलों की आलोचना नहीं करेगा, सीरिया की सरकार उससे वार्ता नहीं करेगी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के देशभर से आए जनप्रतिनिधियों ने टॉम पेरेज को पार्टी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। पेरेज ओबामा प्रशासन में श्रम मंत्री थे। दूसरे दौर के बेहद कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर पेरेज पार्टी के प्रमुख बने हैं। पेरेज के सामने पार्टी को फिर से संगठित कर और मजबूत करने की चुनौती है। राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है। पेरेज ने ट्रंप को अमरीकी इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति भी कहा है। पेरेज ने कहा,
I know we will win the battles ahead when we put our values forward, when we lead.
मैं जानता हूं कि हम अपने सिद्धांतों को आगे रखकर, साथ चलकर और जमीनी ऊर्जा को एकजुट करके आगे आने वाली लड़ाइयों को जीत लेंगे, क्योंकि जनवरी 20 बेशक महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन जनवरी 21 और उसके बाद के अमेरिका के लिए इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। 10 लाख लोग एक साथ जुटे और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम अमेरिका के साथ नहीं खड़े हो। डोनाल्ड ट्रंप, हम अमेरिका के सिद्धांतों को बटने नहीं देंगे। एक पार्टी के रूप में भी हम यही करेंगे, अपने सिद्धांतों को साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी जीत का तरीका यही होगा। ये थे डेमोक्रेटिक पार्टी के नए चेयरमैन टॉम पेरेज के शब्द। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो इस साल व्हाइट हाउस करस्पोंडेंट्स एसोसिएशन की ओर से दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे। कुछ मीडिया संस्थानों और व्हाइट हाउस के बीच खराब होते रिश्तों के समय में ट्रंप ने यह फैसला लिया है। शुक्रवार को बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन समेत कई प्रमुख मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को ट्रंप के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर की प्रेस वार्ता में शामिल नहीं होने दिया गया था। वैनिटी फेयर पत्रिका और मीडिया समूह ब्लूमबर्ग अप्रैल में होने वाले आयोजन से पहले ही ट्रंप के मीडिया के प्रति रवैये की वजह से बाहर हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार फर्जी खबरों को लेकर मीडिया की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया के एक हिस्से को अमरीकी लोगों का दुश्मन भी बताया है। व्हाइट हाउस करस्पोंडेंट एसोसिएशन लगभग 100 साल से हर साल राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करती है और 1924 के बाद से यह पहली बार होगा जब कोई राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होगा। मलेशिया के सुरक्षा अधिकारियों ने कुआलालंपुर के उस टर्मिनल को सुरक्षित घोषित कर दिया है जहां 2 सप्ताह पहले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या कर दी गई थी। मलेशिया की पुलिस इमारत में सुरक्षा जांच कर रही थी। हत्या के लिए बेहद खतरनाक रसायन नर्व एजेंट VX का इस्तेमाल किया गया था। किम जोंग उन पर हमला करने वाली एक महिला ने दोबारा कहा है कि वो निर्दोष है और उसे एक कथित प्रैंक में हिस्सा लेने के लिए $90 दिए गए थे। इस हत्या के सिलसिले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तरी माली के टिम्बकटू में शराब बिक्री का विरोध कर रहे युवा मुसलमानों ने नाइट क्लबों, बारों और शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की है। चश्मदीदों के मुताबिक युवकों ने शराब की बोतलें फोड़ दी और कई प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया। फ्रांस के अभियोजकों ने राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रवादी उम्मीदवार मरीन लेपेन के एक नजदीकी सहयोगी पर आरोप तय कर दिए हैं। नेशनल फ्रंट के लिए काम करने वाली एक कंपनी चलाने वाले फ्रेडरिक शेटलॉन पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी को अवैध कर्ज दिया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं लाइव। उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग होगी। यूपी चुनाव के साथ ओडिशा के पंचायत चुनाव की बात भी हम करेंगे, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। सीरिया के होम्स में कल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक स्थानीय खुफिया प्रमुख भी शामिल हैं। इन हमलों का असर जनेवा में जारी शांति वार्ता पर भी पड़ सकता है। सीरिया ने कहा है कि जो भी पक्ष इस हमले की आलोचना नहीं करेगा, सरकार उससे बात नहीं करेगी। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
जिनेवा में जारी शांति वार्ता में सीरिया के मुख्य वार्ताकार का कहना है कि वार्ता में शामिल सभी पक्षों को शनिवार को सीरिया के सैन्य बलों पर हुए चरमपंथी हमले की आलोचना करनी ही होगी। पश्चिमी सीरिया के होम्स में बंदूकधारियों और आत्मघाती हमलावरों ने सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक सैन्य खुफिया सेवा के एक स्थानीय अधिकारी की भी हमले में मौत हुई है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक मृतकों की संख्या 40 से अधिक भी हो सकती है। जिहादी संगठन तहरीर अल शाम ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। सीरिया के मुख्य वार्ताकार बशर अल जाफरी ने कहा है कि जो भी पक्ष इस हमले की आलोचना नहीं करेगा, सीरिया की सरकार उससे वार्ता नहीं करेगी। बशर अल जाफरी ने कहा, होम्स में आज हुआ चरमपंथी धमाका चरमपंथ के समर्थकों की ओर से जिनेवा के लिए संदेश है। हम यही कहेंगे कि हमें ये संदेश मिल गया है और ये अपराध बेकार में अंजाम नहीं दिया गया है। जिनेवा वार्ता में शामिल मुख्य विपक्षी गुट ने चरमपंथ और चरमपंथी समूहों की तो आलोचना की है, लेकिन शनिवार को होम्स में हुए हमले की आलोचना नहीं की है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत इस्तेफा दे मिस्तूरा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे हमले वार्ता को पटरी से उतारने के लिए किए जा रहे हैं। इस्तेफा दे मिस्तूरा ने कहा, ये दुखद है, भयानक है, और इसलिए ही आप जानते हैं कि हम इस वार्ता के दौरान ऐसे दुखद कारनामों को लेकर आशंकित थे। जब भी हम बातचीत करते हैं या वार्ता करते हैं, तब हमेशा कोई ना कोई होता है जो बात बिगाड़ना चाहता है। हमें इसकी आशंका थी। इन हमलों की जिम्मेदारी लेने वाला समूह तहरीर अल शाम ना ही संघर्ष विराम वार्ता में शामिल था और ना ही शांति वार्ता में शामिल है। इन हमलों के बाद सीरिया के लड़ाकू विमानों ने होम्स में विद्रोहियों के अंतिम इलाकों में हमले किए हैं। हालांकि ये विद्रोही तहरीर अल शाम समूह से जुड़े हुए नहीं है। होम्स शहर दिसंबर 2015 से सीरिया की सेना के नियंत्रण में है। विद्रोही संघर्ष विराम समझौते के तहत होम्स छोड़कर चले गए थे।
सीरिया के होम्स में हमला, ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अब रुख भारत का। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल 52 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। मैदान में 3000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 997 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एक तरफ राजनीति में धनबल की चर्चा हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे मंत्री भी हैं जो आज भी झोपड़ी में रहते हैं। उनके घर पर सत्ता का कोई दिखावा नजर नहीं आता। मंत्री का नाम है वंशीधर बौद्ध। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र बहराइच जिले के बलहा स्थित बौद्ध के घर पहुंचे, वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
बहराइच जिले की नानपारा तहसील से करीब 60 किलोमीटर दूर कतरनिया घाट के जंगल में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री वंशीधर बौद्ध का घर है। इस गांव में रास्ते में जो भी घर दिखे वो कच्चे और घास फूस से बने थे। वंशीधर बौद्ध का घर भी उन्हीं में से एक था। बहराइच के बलहा सुरक्षित क्षेत्र से विधायक वंशीधर बौद्ध के पास न तो कोई गाड़ी है, न ही बैंक बैलेंस और न ही कोई खेतीबाड़ी। सुबह करीब 8 बजे उनके दरवाजे पर जब हम पहुंचे तो वंशीधर बौद्ध चुनाव प्रचार के लिए अपने समर्थकों के साथ निकलने की तैयारी में थे। हमारी पहली जिज्ञासा यही थी कि विधायक और मंत्री बनने के बाद भी क्या उनका ध्यान गाड़ी बंगले की ओर नहीं गया।
जनता ने ही वोट हमको दिया, उन्हीं के वोट के बल पर हम विधायक हुए, तो पहले हमने जनता को देखा है और आने वाले समय में फिर जनता मौका दे देगी तो अपना भी देखेंगे।
कई साल पहले बलिया से रोजगार की तलाश में उनके पिता बहराइच आए थे। साल 2000 में वो अचानक राजनीति में आ गए। उनका राजनीति में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है।
इसी सेंट्रल स्टेट फार्म में पहले चौकीदारी करते थे, तो चौकीदारी में हमको हमारी गेट पर ज्यादातर से ड्यूटी लगती थी, तो हमको लेबर टाइप का जो आदमी था वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम रखता था। और इसी तरह मिल गया, ऐसी सीट आ गई तो चुनाव लड़े और जीत गए 2000 में जिला पंचायत सदस्य।
और फिर उनके विधायक और मंत्री बनने की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है।
उपचुनाव में संजोग बस हम इसी रोड पर भैंसे हैं देख रहे हैं, 3-4 वही चरा रहा था, तब तक अचानक पंडित सिंह से हमारी मुलाकात हो गई। पंडित सिंह हमसे बात किए तो बात से कुछ प्रभावित भी हुए और यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको टिकट दे दिया और उपचुनाव में जीत गए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिटिया की शादी में निमंत्रण दिया था तो आए और हमारी गरीबी को देख करके उन्होंने हमें मंत्री बना दिया।
वंशीधर बौद्ध बेहद सरलता से बताते हैं कि दूसरे विधायकों और मंत्रियों को देखकर भी उनकी बराबरी का भाव उनके अंदर नहीं आता है। कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मिल गया वो भी कम नहीं है। न सिर्फ वंशीधर बौद्ध बल्कि उनके परिवार के दूसरे सदस्यों में भी इसी सरलता और संतोष के भाव है। उनकी पत्नी कहती है,
कमाई है तब न बने है कि वही तरह बने है।
कमाए नहीं है
अब इन कहा कमाए है,
तो कब कमाएंगे, 2.5-3 हो गया
तो तन तो सिखत में लगल बा।
स्थानीय लोग भी उनकी सादगी के कायल हैं। बहराइच के पत्रकार अजीम मिर्जा गांव में पक्का घर न बना पाने की एक और वजह बताते हैं, जिसे वंशीधर बौद्ध भी स्वीकार करते हैं।
एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वो वन ग्राम क्षेत्र है, वहाँ कोई पक्का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है। तो अगर इन्होंने 2.5 में, जैसा कि इन्होंने हम लोगों को पहले बताया कि 2.5 में लगभग 4.5 लाख रुपए इन्होंने कमाए हैं, तो 4.5 लाख रुपए से घर की बुनियाद रखी जा सकती है, छोटा घर बनाया जा सकता है। लेकिन वो घर सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया जा सका क्योंकि वहाँ पक्का निर्माण हो नहीं सकता था। और दूसरी वजह यह है कि शहर में बनाने के लिए अभी इनके पास संसाधन नहीं है।
उनके 5 और 3 हैं। बड़े भाई का परिवार भी साथ रहता है, सभी बेरोजगार हैं। हालांकि बच्चे सभी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और नौकरी की तलाश में हैं। फिलहाल अभी किसी को नौकरी नहीं मिली है, लेकिन किसी को इस बात की कोई शिकायत भी नहीं है कि उनके मंत्री पिता ने उन लोगों के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका अंदाजा वंशीधर बौद्ध की बड़ी बहू विमला की इन बातों से लगाया जा सकता है।
धन दौलत तो सब कुछ यही रह जाता है, लेकिन समाज में सेवा करने का मौका ईश्वर देता है तो उसे मौका का नाम है सेवा करनी चाहिए।
समीर आत्मज मिश्र, BBC, बहराइच।
उत्तर प्रदेश के बाद रुख ओडिशा का। चुनावी चर्चा ओडिशा में भी गर्म है। ओडिशा में हाल में हुए पंचायत चुनाव में सत्ताधारी बीजू जनता दल को झटका लगा है। पार्टी अब भी नंबर 1 है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी सीटें घटी हैं। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर आ गई है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन उसने अपनी ताकत में बड़ा इजाफा किया है। चुनाव के बाद कैसे बदले हैं राजनीतिक समीकरण, बता रहे हैं भुवनेश्वर से संदीप साहू अपनी इस रिपोर्ट में।
उड़ीसा में पंचायत चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजू जनता दल दावा कर रही थी कि पार्टी राज्य के 851 जिला परिषद सीटों में से 700 में जीत हासिल करेगी, लेकिन शनिवार को जब चुनाव परिणाम आए तो बीजद को जोर का झटका लगा। 700 तो दूर, पार्टी को सिर्फ 471 सीटें ही मिली। हालांकि बीजद के नेता ये कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी अब भी राज्य में नंबर 1 है। वरिष्ठ बीजद नेता अमर प्रसाद शतपथी का कहना था,
जो माने उत्तर प्रदेश और दिल्ली रे कथा को प्रकाश करचोनी
जो लोग इसे लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में डींगे मार रहे हैं, उन्हें आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। एक स्थानीय चुनाव को उन्होंने एक राष्ट्रीय चुनाव बना दिया। मैं समझता हूं जो रुझान पहले से ही थी वही अंत तक बरकरार है। सतपथी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन पंचायत चुनाव के परिणाम बीजद के लिए अप्रत्याशित थे। ये बात खुद पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पिछले बुधवार को ही स्वीकार कर लिया था, जब औपचारिक रूप से नतीजे भी नहीं आए थे। बुधवार को मुख्यमंत्री ने जिस बात की ओर सिर्फ इशारा किया था, कल परिणाम आने के बाद वही बात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुलकर कहा। उन्होंने कहा, बीजेडी के नेता विधानसभा या सचिवालय से निकलते हुए ये टिप्पणी कर रहे थे कि विपक्षी पार्टियां नंबर 2 और 3 के स्थान की लड़ाई लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री से यही कहूंगा कि जोर का झटका धीरे से लगा। बीजेड शायद ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी पार्टी को त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा मिलने वाला है, लेकिन इस बार चुनाव में भाजपा जिस प्रकार से उभर कर आई और कांग्रेस पूरी तरह से दरकिनार हो गई, उससे बीजेपी की सारी अटकलें उलट पुलट हो गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि चुनावी मैदान में अपेक्षित त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी और भाजपा के बीच सीधा टक्कर बन गया, जिसका पूरा फायदा भाजपा को मिला। कल तक राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस की इस दुर्दशा के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है गुटबाजी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद मुकीम ने कहा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश भाजपा ने जिस तरह काले धन का उपयोग किया और वोट खरीदने की कोशिश की, उसमें हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। पंचायत चुनाव के परिणामों से ये स्पष्ट हो गया है कि पिछले 17 सालों में पहली बार बीजू जनता दल का जन समर्थन कम हुआ है। प्रेक्षकों का मानना है कि इस बार सत्तारूढ़ पार्टी से मुंह मोड़ लेने वाले वोटरों में बड़ी संख्या बदहाल किसानों, चिटफंड घोटाले के शिकार हुए लोगों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन कार्ड से वंचित लोगों का है। इसके अलावा कालाहंडी में दाना माझी के अपनी पत्नी के शव को लेकर 10 किलोमीटर चलना, इन सभी चीजों का खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा।
ये थे संदीप साहू। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए कनाडा के लेखक और मुस्लिम कनेडियन कांग्रेस के संस्थापक तारिक फतेह ने इस्लाम, मुसलमान और भारत पाकिस्तान रिश्तों से संबंधित कई मुद्दों पर बीबीसी से बात की है।
अगर हिंदुओं ने बंटवारा किया होता तो मैं हिंदुओं को कहता, अगर हिंदुओं ने वो हशर किया होता जो 30 लाख मेरे बंगाली भाइयों को मारा होता तो आज मैं उनके खिलाफ होता। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो मानेकशॉ और जनरल अरोरा जैसे हीरोज को मैं मानता हूँ, चाहे इंदिरा गांधी थी उससे बड़ी मैं समझता हूँ शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बार बार मिले, जिन्होंने खड़े होकर पूरी दुनिया को कहा टू हेल विथ यू।
हम ये पूरी बातचीत आज शाम संडे दिन भर में सुनवाएंगे, आप सुनना ना भूलें।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और दिलनवाज पाशा तैयार हैं सारे अखबारों के साथ जो दिल्ली से छपे हैं बताने के लिए कि आज क्या सुर्खियां हैं। दिलनवाज
जी, भारत की टीम टेस्ट मैच हार गई, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी शर्मनाक ये हार रही, आज के अखबार ये कह रहे हैं। लगभग सभी अखबारों में विराट कोहली का उदास चेहरा छपा है।
जी, पहले नंबर की टीम है। लेकिन
और इसके अलावा एक और उदास करने वाली खबर दिल्ली से है, जहां 2 मासूम बच्चों की वॉशिंग मशीन में डूब कर मौत हो गई। जब मैंने इन जुड़वा भाइयों की मौत की खबर पढ़ी तो बहुत देर तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि कैसे वॉशिंग मशीन में डूबकर बच्चों की मौत हो सकती है। और सबसे दुखद पहलू ये है कि इनकी माँ सिर्फ 5 मिनट के लिए सर्फ लेने के लिए बाहर गई थी। तो कभी कभी बहुत छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ा हादसे में बदल जाती है। इसके अलावा अमरीका में हिंसा का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर की पत्नी सुनैना का बयान आज के भारतीय अखबारों में प्रमुखता से छपा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन से पूछा है कि वो हिंसा रोकने के लिए क्या करेंगे। और इससे जुड़ी एक खबर हम बता दें कि आज हमारी वेबसाइट पर भी इनका खास साक्षात्कार सुनैना का आ रहा है। समीर आत्मज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के बहराइच के बलहा से रिपोर्ट पेश की और वन मंत्री जी के बारे में बताया जिनके पास कुछ नहीं। उसी सीट से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आज के इंडियन एक्सप्रेस में है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदवार हैं भारती, उन्होंने काफ़ी पहले प्रेम विवाह किया था मोहम्मद शौकत खान से। और अखबार लिखता है कि ये प्रेम विवाह जीत की वजह बन सकता है क्योंकि दोनों ही समुदाय के वोट वहां पर मिल रहे हैं। ये
जी, आपने यूपी चुनाव की बात की दिलनवाज, मैं इस समय ये बताना चाहता हूं कि यूपी चुनाव में बड़ी बयानबाजी भी हो रही है। और उसको लेकर हमारे सहयोगी कीर्तिश ने बड़े दिलचस्प कार्टून बनाए हैं जिसे आप bbchindi.com के पन्ने पर आकर देख सकते हैं, यूपी चुनाव और इस हफ्ते के कार्टून।
जी, एक और खबर आज के संडे टाइम्स से, उड़ी हमला जो हुआ था जिसमें भारत के कई सैनिक मारे गए थे पिछले साल सितंबर में, इस हमले के सिलसिले में हमलावरों की मदद करने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबूत न होने की वजह से ये लोग रिहा हो सकते हैं। और इसके अलावा जिक्र जनसत्ता की एक खबर का जिसके मुताबिक पीस पार्टी के अध्यक्ष पर, ये डॉक्टर अयूब हैं, इन पर एक लड़की के बलात्कार का आरोप लगा है। लड़की के भाई ने कहा है कि डॉक्टर अयूब काफ़ी लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहे थे और लड़की की मौत हो गई है। तो ये खबर आज की जनसत्ता में है। जनसत्ता की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना की नज़दीक आने की कोशिशें, गठबंधन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं।
जी शुक्रिया दिलनवाज। और अब वक्त है न्यूज़ मेकर्स का। इस हफ्ते के न्यूज़ मेकर हैं क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज। तेलंगाना के सिराज को आईपीएल की हालिया नीलामी में 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत मिली है। उनके पिता हैदराबाद में ऑटो रिक्शा चलाते हैं जबकि उनकी मां करीब साल भर पहले तक दूसरों के घरों में काम करती थी। सुनिए उनसे खास बातचीत।
नमस्कार, बीबीसी न्यूज मेकर्स में मैं राखी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाल ही में हुई आईपीएल 10 की नीलामी में कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने सबको चौंका दिया। इस नीलामी में एक भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद सिराज का भी चयन हुआ। सिराज की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा। इस तेज गेंदबाज का हालिया फर्स्ट क्लास सीजन शानदार रहा। इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें भारत ए और शेष भारत के लिए भी टीम में शामिल किया गया। सिराज है इस हफ्ते बीबीसी न्यूज मेकर्स और हमारे साथ मौजूद है। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू।
सिराज, जितनी आपकी बेस प्राइस रखी गई थी उसे 10 गुना से भी ज्यादा आपको नीलामी में खरीदा गया है। आप देख रहे थे नीलामी, क्या कुछ चल रहा था उस वक्त आपके मन में?
मेरे को तो अमाउंट का कुछ ऐसा वो नहीं था, खाली बस मुझे आईपीएल में सेलेक्ट होना था बस, और मुझे इतना अमाउंट मिला और उससे खुशी की बात और कुछ नहीं।
सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 9 यानी पिछले साल की विजेता है और इसी टीम के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे?
हाँ, क्यों बोले तो हैदराबाद मेरा होम टीम है, मैं इनके लिए खेलना बहुत गर्व की बात करता हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद मेरा होम ग्राउंड है, फिर होम टीम है मेरी, मैं हैदराबाद के लिए खेलूंगा, बहुत खुशी की बात है। वो तो कॉन्फिडेंट एक अलग हाई कॉन्फिडेंट हुआ था।
सनराइजर्स हैदराबाद टीम के पास बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं, चाहे वो शिखर धवन हो, भुवनेश्वर कुमार हो, डेविड वार्नर या युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी। ये बताइए, इनमें से किसी खिलाड़ी से आपकी पहले मुलाकात हुई है?
अभी तक तो लास्ट मैच में इंडिया है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था जब वार्नर से मुलाकात हुई थी, शेक हैंड करे बस, बातचीत तो नहीं हुई।
सिराज, अब क्योंकि नीलामी हो चुकी है तो बहुत जल्द आईपीएल टीमों के कैंप लगने भी शुरू हो जाएंगे, तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके मन में? टीम के साथ जुड़ेंगे, खिलाड़ी होंगे, उनसे किस तरह की बातचीत होगी?
बातचीत तो जैसा आप सीनियर के साथ रहते हैं, अपन जूनियर है, कैसी बात करना सीनियर से, एक रेस्पेक्ट देना सीनियर्स को, एक अच्छा उनसे कुछ सीखने को मिलेगा सीनियर से, बहुत खुशी की बात है सीनियर के साथ हम ज्वाइन हो रहे हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद टीम में आपका कोई पसंदीदा खिलाड़ी है?
मेरा फेवरेट सनराइजर हैदराबाद में से तो युवराज सिंह, डेविड वार्नर और मुर्तजा रहमान, पूरे अच्छे प्लेयर है।
हाल के दिनों में कोई ऐसा गेंदबाज है जिनकी गेंदबाजी आपको बहुत प्रभावित करती हो और क्या ऐसी खूबी है उनकी गेंदबाजी में?
मैं मिचेल स्टार्क का जो यॉर्कर ब्लॉकर जो है उनका D20 फॉर्मेट तो वही अच्छा लगेगा डेथ ओवर में।
सिराज, आप हैदराबाद से हैं, अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएंगे?
हाँ, हमारे फैमिली मॉम घर पे रहते है, डैड ऑटो चलाते, हमारे भाई जॉब करते समझो IT सॉफ्टवेयर कंपनी में।
तो इस खेल को जारी रखने में दिक्कतें तो काफी आई होंगी, जैसा कि आपने बताया एक साधारण परिवार से आने वाले लड़के के लिए क्रिकेट खेलना उतना भी आसान नहीं है।
जी हाँ, वो तो कुछ नॉर्मल नहीं है, बट अब करें, स्ट्रगल करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो
आपको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है क्रिकेट में आए हुए, अपने घरेलू क्रिकेट के बारे में थोड़ा बताएंगे?
मैंने डोमेस्टिक पहले वनडे कल कर्नल एक्रिलिक में खेला मैं वनडे, फिर इसके बाद हमारे मामा के साथ में खेला, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करा, तो मैं उतना मुझे उतना शौक उतना आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे को तो उतना नहीं मालूम था कि जब क्रिकेट किया, फिर इसके बाद जो टुडे में मैं स्टार्ट करा तो जब इतना परफॉर्मेंस करने के बाद मुझे हर चीज कामयाब होने लगी कि मैं और माँ बाप की दुआ से मैं कामयाब होते गया हर चीज में।
आपके साथ साथ टी नटराजन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सामान्य परिवार से आते हैं, तो इन खिलाड़ियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर इनके लिए किस तरह के रास्ते खुलते हैं?
पूरे अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाती है, अपने घर का एक अच्छा घर मिल जाता है, अपने को एक टेंशन दूर हो जाती है, घर पे वो हो जाता है, सुकून सा हो जाता है।
तो अब सिराज के क्या सपने हैं? आईपीएल के जरिए वो अपने परिवार को किस तरह की मदद पहुंचाना चाहते हैं?
मैं फैमिली को फर्स्ट मैं तो एक अच्छा सा बड़ा घर लेने का मेरा वो एक इसके अलावा बात सोचेंगे अपन।
तो इस सीजन में अपने लिए क्या टारगेट लेकर उतरेंगे आप जब हैदराबाद सनराइजर्स टीम की तरफ से उतरेंगे?
मैं इस सीजन में अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा कि पर्पल कैप मैं लूंगा, अच्छा मुझे चांस मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं कि ये सीजन में अच्छा करके मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा।
और आखिर में आपने कोई खास नाम ऐसा सोचा है जो बल्लेबाज आपके निशाने पर होगा?
जी मेरा तो फेवरेट बैट्समैन विराट कोहली है, और मैं उनको बॉल डालना बहुत समझूंगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिराज बीबीसी से बातचीत के लिए।
थैंक यू।
कहानी जमीन से आसमान तक पहुंचने की। खेल के मैदान पर आसमान से जमीन पर आते भी देर नहीं लगती है। टेस्ट क्रिकेट की नंबर एक टीम भारत के साथ पुणे में यही हुआ। सुनते हैं खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। अपनी जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में मात देने में माहिर माने जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को आखिरकार दुनिया की नंबर दो टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया ने पुणे में खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन कल 333 रनों से करारी मात दी और इसके साथ ही चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली। भारत के सामने जीत के लिए 441 रनों का विशाल लक्ष्य था और जिस पिच पर बल्लेबाजों के लिए एक एक गेंद खेलना मुश्किल हो रहा हो वहां भारतीय बल्लेबाजी दूसरी पारी में 107 रनों पर ढह गई, वो भी केवल 33.5 ओवर का सामना करने के बाद। थोड़ा बहुत संघर्ष चेतेश्वर पुजारा ने 31 रन बनाकर किया, कप्तान विराट कोहली 13, अजिंक्य रहाणे 18 और केएल राहुल 10 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया की जीत के नायक रहे खब्बू स्पिनर स्टीव ओकीफ जिन्होंने 35 रन देकर 6 विकेट झटके। उनके जोड़ीदार ऑफ स्पिनर नॉर्थन लियन ने भी 53 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। कीफ ने तो पहली पारी में भी 35 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे, ऐसे में उनसे बेहतर प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो सकता था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कल 4 विकेट पर 143 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 18वां शतक जमाते हुए 109 रनों की शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 285 रनों पर समाप्त हुई। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 155 रनों की बढ़त हासिल हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने रोका भारत का जीत का रथ और कप्तान विराट कोहली ने खुले दिल से ये स्वीकार किया।
We played good cricket, that's why we won. We played bad cricket, we lost a game of cricket. That's how simply.
इस हार के बाद हमें आसानी से समझ आ गया है कि हमने शानदार क्रिकेट खेली इसलिए जीते और खराब क्रिकेट खेलकर हारे और इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे और अगले मैच में मजबूत होकर खेलेंगे। कप्तान विराट कोहली के शब्द। अब जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया है कि उन्हें कमजोर आंकना भारत को कितना महंगा पड़ा। वहीं टेनिस के कोर्ट पर भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा दुबई टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग के सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गई। उन्हें रूसी जोड़ी एलिना वेस्लिना और एकातेरिना माकारोवा ने 6-4 6-3 से मात दी।
क्या आपका फोन आपकी जासूसी करता है? जानना चाहते हैं कैसे, तो रुक कीजिए bbchindi.com का, जहां किरोन वॉर्ली की कहानी में इसे विस्तार से बताया गया है। वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो इस साल व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन की ओर से दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के देशभर से आए प्रतिनिधियों ने टॉम पेरेज को पार्टी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। जिनेवा में जारी शांति वार्ता में सीरिया के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि वार्ता में शामिल सभी दलों को शनिवार को होम्स में हुए हमलों की आलोचना करनी ही होगी। इन हमलों में 32 लोग मारे गए थे। जर्मनी के हिडलबर्ग में पैदल लोगों पर कार चढ़ा दिए जाने की वारदात में 73 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुनाया दिलनवाज पाशा ने। तो इसी के साथ ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। सभी साथियों के साथ वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।